वचन। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा करते हैं कि आप सब आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। प्रिय श्रोताओं, हमें जानकर बेहद खुशी हो रही है कि हमारे इस बाइबल अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से पहला इतिहास नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिलेगा। तो आइए, इससे पहले कि हम आज का ये बाइबल अध्ययन आरंभ करें, सुनते हैं एक मधुर गीत।
सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि को सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। आ आ आ हालेलुया, आ आ हालेलुया, आ आ हालेलुया, आ आ हालेलुया। सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहकर अपने जीवन में आनंदित हैं और फिर से एक बार आज परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए आप तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का प्रभु यीशु के नाम में इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके उन नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल की पुस्तक उसके पहला इतिहास के पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने दाऊद के योद्धाओं के बारे में पढ़ा और देखा। अब हम देखेंगे कि दाऊद ने वाचा का संदूक यरूशलेम लाने का प्रयास किया और परमेश्वर की दृष्टि में उसका यह पहला प्रयास सही था या गलत था। आपको स्मरण होगा कि न्यायों की पुस्तक में वाचा का संदूक पलिस्ती युद्ध के मैदान में इसराइल से छीन कर ले गए थे। अब क्योंकि वाचा के संदूक के कारण उन्हें अनंत कष्ट उठाने पड़ रहे थे, तो उन्होंने उसे एक नई गाय की गाड़ी पर रखकर लौटा दिया था, जिसे हम पहले सामुएल की पुस्तक उसके 6 अध्याय में पाते हैं। उस दिन से दाऊद के युग तक वाचा का संदूक किर्यतरीम में अबिनादाब के घर में ही था। अब दाऊद वाचा के संदूक को राजधानी में अर्थात यरूशलेम लाने का प्रयास करता है। परमेश्वर ने इस पर ध्यान दिया क्योंकि वह आत्मिक बातों पर दाऊद द्वारा दिए गए महत्व से प्रसन्न हुआ था। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि आज हम देखेंगे कि दाऊद ने गलत आरंभ किया या सही, तो आइए आप मेरे साथ निकाल लीजिए पहले इतिहास की पुस्तक 13 अध्याय उसका 1 पद, पहले इतिहास की पुस्तक 13 अध्याय उसका 1 पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, और दाऊद ने सहस्त्रपतियों शतपतियों और सब प्रधानों से सम्मति ली। ध्यान दीजिए, दाऊद इसराइल का नया राजा था। सिंहासन पर बैठने के बाद उसने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई, जैसे कि कई मंत्री अपने जीवन काल में इस प्रकार की योजनाओं को बनाते हैं। उसने वाचा के संदूक को यरूशलेम लाने का स्वप्न संजोया, अतः वह सब प्रधानों के साथ बैठ करके उसकी मंत्रणा की। मेरे विचार में इन मनुष्यों की राय जानना दाऊद की भूल थी, क्योंकि परमेश्वर उसका मार्गदर्शन कर रहा था, वही उसकी अगुवाई भी कर रहा था। उसने मनुष्य की अगुवाई की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। मित्रों, जैसा मैं देख रहा हूं, आज कलीसियाओं में गहन समस्याएं उत्पन्न हो रही है, क्योंकि मनुष्य विशेष करके समितियां अपने निर्णय लेना चाहते हैं। समस्या तो उत्पन्न होगी ही, क्योंकि ये मनुष्य निर्णय लेने के लिए आत्मिकता से सुसज्जित नहीं है। अनेक बार उनके अनुचित निर्णय मसीह के काम को क्षतिग्रस्त करते हैं। मेरे मित्रों, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इन अगुओं से परामर्श करके दाऊद ने बहुत बड़ी भूल की थी। सबकी सुनकर दाऊद परेशानी में पड़ गया था। आइए हम पढ़ें पहले इतिहास की पुस्तक 13 अध्याय उसके 2 और 3 पद में। पहले इतिहास की पुस्तक 13 अध्याय उसके 2 और 3 पद में लिखा है, तब दाऊद ने इसराइल की सारी मंडली से कहा, यदि यह तुमको अच्छा लगे और हमारे परमेश्वर की इच्छा हो, तो इसराइल के सब देशों में जो हमारे भाई रह गए हैं और उनके साथ जो याजक और लेवीय अपने अपने चराई वाले नगरों में रहते हैं, उनके पास भी यह कहला भेजें कि हमारे पास इकट्ठे हो जाओ और हम अपने परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ ले आए, क्योंकि शाऊल के दिनों में हम उसके समीप नहीं जाते थे। मेरे मित्रों, यह शाऊल के युग पर एक टिप्पणी है। उस युग में मिलाप वाले तंबू में उपासना समाप्त हो गई थी, परिणाम स्वरूप संपूर्ण व्यवस्था समाप्त हो गई थी। लेवी भी तितर बितर हो गए थे, अतः संपूर्ण देश में समाचार भेजा गया कि दाऊद वाचा का संदूक यरूशलेम में लाना चाहता है। तब हम आगे पढ़ते हैं पहले इतिहास की पुस्तक 13 अध्याय के 4 पद में लिखा है, और समस्त मंडली ने कहा, हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि यह बात उन सब लोगों की दृष्टि में उचित मालूम हुई। मेरे मित्रों, निर्णय निर्विरोध था। यह सब चाहते थे कि वाचा का संदूक यरूशलेम में लाया जाए। तब हम आगे पढ़ते हैं पहले इतिहास की पुस्तक 13 अध्याय के 5 पद में लिखा है, तब दाऊद ने मिस्र के शिहोर से ले हमात की घाटी तक के सब इसराइलियों को इसलिए इकट्ठा किया कि परमेश्वर के संदूक को किर्यत्यारीम से ले आए। ध्यान दीजिए, पहला शमूएल 7 अध्याय में हमने देखा था कि वाचा का संदूक किर्यत्यारीम में था, क्योंकि पलिस्तियों पर उसके कारण विपत्ति आ रही थी। और अब हम आगे देखेंगे पहले इतिहास की पुस्तक 13 अध्याय के 6 पद में लिखा है, तब दाऊद सब इसराइलियों को संग लेकर बाला को गया, जो किर्यत्यारीम भी कहलाता और यहूदा के भाग में था, कि परमेश्वर यहोवा का संदूक वहां से ले आए। वह तो करूबों पर विराजने वाला है और उसका नाम भी यही लिया जाता है। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए कि परमेश्वर वाचा के संदूक में वास नहीं करता था, न ही वह करूबों पर विराजमान था। परंतु उसने इसराइल से भेंट करने के लिए वह स्थान निश्चित किया था, वहां उसकी उपस्थिति थी। अब वे बड़ी भूल करने जा रहे हैं। किसी ने उचित ही कहा है, सही काम गलत तरीके से करना। वाचा का संदूक यरूशलेम लाना तो उचित था, परंतु उसके परिवहन की विधि गलत थी। हम पहले इतिहास की पुस्तक 13:7 में पढ़ते हैं, तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर अबीनादाब के घर से निकाला और उज्जा और आहो उस गाड़ी को हांकने लगे। यहां पर आप ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने वाचा के संदूक के परिवहन के स्पष्ट निर्देश दिए हुए थे। मिलाप वाले तंबू के अन्य सब अवयव गाड़ियों पर ले जाए जा सकते थे, परंतु वाचा का संदूक नहीं। गिनती की पुस्तक 4:15 में देखिए, परमेश्वर ने मूसा को क्या निर्देश दिए थे। जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए, पर किसी पवित्र वस्तु को न छुए, कहीं ऐसा ना हो कि वे मर जाएं। कहातियों के उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू की ये ही वस्तुएं हैं। मेरे प्रियो, वाचा का संदूक गाड़ी पर रखकर नहीं ले जाना था, उसे कहात वंशियों के कंधों पर उठाया जाना था। क्यों? क्योंकि वाचा का संदूक मसीह का प्रतीक है और मसीह को आज भी कंधों पर ही उठाना है। मनुष्य प्रायः इसे आसान विधि से उठाना चाहता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन को फैलाने में परिश्रम की आवश्यकता होती है। मनुष्य लागत के बारे में कुड़कुड़ाता है, मैं तो अपना व्यय स्वयं वहन करता हूं। और आपको भी बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन के प्रचार में लागत लगती है। हम उसे वाहन पर रख कर नहीं भेज सकते, हमें स्वयं उसे उठाना है, अर्थात उसे लेकर के जाना है। प्रत्येक जन को उसका अपना बोझ उठाना है। अतः आइए हम इसका प्रचार प्रसार करें। गलातियों की पत्री 6:5 में पौलुस कहता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जी हाँ, सबको अपना अपना बोझ उठाना है। दूसरे शब्दों में, हम सबको इस प्यासे संसार में वचन के प्रसारण हेतु कंधा लगाना है। परमेश्वर आकाश में सुसमाचार नहीं लिखता है, उसकी संतान ही है जो उसके वचन को फैलाएगी, अर्थात लोगों तक पहुंचाएगी जो आज तक परमेश्वर के वचन को नहीं सुने हैं, नहीं जानते हैं। हम आगे पढ़ते हैं, पहले इतिहास की पुस्तक 13:8 में, और दाऊद और सारे इसराइली परमेश्वर के सामने तन मन से गीत गाते और वीणा, सारंगी, डफ, झांझ और तुरहियां बजाते थे। मेरे प्रियो, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि दाऊद एक महान गीतकार था और यह अवसर बड़े आनंद का समय था, परंतु अचानक ही दुर्घटना घटी और सब शांत हो गया। हम पढ़ते हैं पहले इतिहास की पुस्तक 13:9-10 में, जब वे किदोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ संदूक थामने को बढ़ाया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और उसने उसको मारा, क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था, वह वहीं परमेश्वर के सामने मर गया। मेरे प्रियो, वह क्यों मरा? क्योंकि उनका तरीका गलत था, उनकी गवाही सही नहीं थी। आप कहेंगे, यह तो वास्तव में निर्दयता थी, उसने केवल हाथ ही तो लगाया था। पहले तो यह जान लीजिए कि वाचा के संदूक को बैलगाड़ी पर नहीं रखना था। दूसरी बात, वाचा के संदूक को उज्जा के सहारे की आवश्यकता नहीं थी। जी हाँ, आज अनेक जन प्रभु के कामों में हार डाल रहे हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना है। वे परमेश्वर के कामों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। मैं आपको ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं जो अति संभव है कि मनुष्यों के मन में अच्छाई का विचार है, परंतु वे परमेश्वर की रीति से काम नहीं करते हैं, या यूं कहें कि उसके अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, परिणाम यह होता है कि आशीषें प्राप्त नहीं होती हैं। ठीक ऐसा ही वाचा के संदूक के साथ था। हाथ लगाने वाला व्यक्ति हटा दिया गया, अर्थात वह मर गया। पहले इतिहास की पुस्तक 13 अध्याय उसकी 11 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, तब दाऊद अप्रसन्न हुआ इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था और उसने उस स्थान का नाम पेरेसुज्जा रखा, यह नाम आज तक बना है। दाऊद अप्रसन्न था, आप भी तो अप्रसन्न ही होते और आज का आलोचक भी अप्रसन्न होता क्योंकि यह घटना घटी थी। हम आगे पढ़ते हैं पहले इतिहास की पुस्तक 13 अध्याय उसके 12 पद में, और उस दिन दाऊद परमेश्वर से डर कर कहने लगा, मैं परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ कैसे ले आऊं। ओह, कितनी बार हम अपनी ही विधि काम में लेते हैं और जब सफल ना हो तो परमेश्वर को दोष देते हैं। हम कहते हैं, मैं प्रभु के लिए यह कैसे करूं, अर्थात परमेश्वर की रीति से करें, उसके हाथ में अपने आप को दे दें। अंततः दाऊद ने भी यही किया। हम आगे पढ़ते हैं पहले इतिहास की पुस्तक 13 अध्याय उसके 13 और 14 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब दाऊद ने संदूक को अपने यहां दाऊदपुर में न लाया, परंतु ओबेदेदोम नाम गति के यहां ले गया, और परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के यहां उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर भी आशीष दी। मेरे मित्रों, घटना का यहां अंत होता है और इस समय वाचा का संदूक यरूशलेम नहीं लाया जा सकता था। परमेश्वर उसके संरक्षण को आशीषें दे रहा था और अब दाऊद का ध्यान किसी और बात पर जाता है। अब हम आगे देखेंगे राजा दाऊद की समृद्धि। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 13 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 14 में देखते हैं कि परमेश्वर दाऊद के समृद्धि प्रदान कराता है और उसकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच रही है। आइए हम पढ़ेंगे पहले इतिहास की पुस्तक 14 अध्याय उसका 1 पद, लिखा हुआ है, और सोर के राजा हिराम ने दाऊद के पास दूत भेजे और उसका भवन बनाने को देवदारू की लकड़ी और राज और बढ़ई भेजे। मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिए कि दाऊद और हिराम अच्छे मित्र थे और यह भी लिखा है कि हिराम दाऊद से प्रेम रखता था। दाऊद के राज्य के आरंभ में हिराम उसका महल तैयार करने में सहायता करता था। तब हम आगे पढ़ते हैं पहले इतिहास की पुस्तक 14 अध्याय उसके 2 और 3 पद में, लिखा है, और दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा ने मुझे इसराइल का राजा करके स्थिर किया, क्योंकि उसकी प्रजा इसराइल के निमित्त उसका राज्य अत्यंत बढ़ गया था, और यरूशलेम में दाऊद ने और स्त्रियां ब्याह ली और उनसे और बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। आप शायद सोच रहे होंगे, परमेश्वर ने ऐसा होने दिया, अर्थात अनुमति दी। जी हाँ, परमेश्वर ने आपत्ति नहीं उठाई, परंतु परमेश्वर ने इसका अनुमोदन नहीं किया। इसके कारण अंततः परमेश्वर का दंड उस पर पड़ेगा और वह आजीवन दुख उठाएगा, क्योंकि परमेश्वर कभी भी अनुचित काम नहीं होने देता और यह अनुचित काम था। यहाँ इसका उल्लेख करने का अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर बहुपत्नी या बहुविवाह को मान्यता देता है, परंतु यह कि वह हमें ऐतिहासिक तथ्य बताना चाहता है। आगे चलकर हम परमेश्वर का व्यवहार को देखेंगे। हम देखते हैं पहले शमूएल की पुस्तक 27 अध्याय में, एक बार तो पलिस्तियों ने दाऊद को अपना साथी समझा था क्योंकि वह शाऊल से भाग रहा था, परंतु अब क्योंकि वह अपने लोगों में लौट आया है और इसराइल का राजा बन गया है, पलिस्ती उसकी जान के पीछे लग गए हैं। हम पहले इतिहास की पुस्तक 14 अध्याय उसके 9 से 12 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और पलिस्ती आए और रपाइम नाम तराई में धावा मारा। तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं पलिस्तियों पर चढ़ाई करूं और क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने उससे कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए जब वे बाल परासीम को आए, तब दाऊद ने उनको वहीं मार लिया, तब दाऊद ने कहा, परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे शत्रुओं पर जल की धारा की नाई टूट पड़ा है, इस कारण उस स्थान का नाम बाल परासीम रखा गया। वहां वे अपने देवताओं को छोड़ गए और दाऊद की आज्ञा से वे आग लगाकर फूंक दिए गए। मेरे प्रियो, पलिस्तियों पर दाऊद की यह एक महान विजय थी। इसराइल पलिस्तियों पर विजय पाने में अधिक सफल नहीं रहा था। हम आगे पढ़ेंगे पहले इतिहास की पुस्तक 14 अध्याय उसके 13 और 14 पद में, जहां पर आगे इस प्रकार से लिखा है, फिर दूसरी बार पलिस्तियों ने उसी तराई में धावा मारा। तब दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा और परमेश्वर ने उससे कहा, उनका पीछा मत कर, उनसे मुड़कर तूत के वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, दाऊद सोच सकता था, अस्तु, मैं तो पलिस्तियों पर पहले ही विजय भी हो चुका हूँ और सीधा युद्ध करने निकल पड़ता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने परमेश्वर से पूछा और परमेश्वर ने उससे कहा कि सामना करने की अपेक्षा तूत के वृक्षों तक पीछे हट जाए, क्योंकि वह स्थान उसके लिए लाभकारी होगा। जी हाँ, अनेक विश्वासी परमेश्वर पर विश्वास करने के बहाने उसकी परीक्षा लेते हैं। वे परमेश्वर पर विश्वास करने को एक व्यापार या समझौता आदि कुछ बना देते हैं। वे कहते हैं कि यह उनके विश्वास का प्रमाण है, परंतु उनके पास क्या आश्वासन है कि जैसा वे करते हैं वह परमेश्वर की इच्छा है? मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं पवित्र बुद्धि काम में लें। मैं ऐसे मनुष्यों को जानता हूं जो अपनी कल्पना को विश्वास कहते हैं। वे कहते हैं कि वे विश्वास करके कोई काम कर रहे हैं, जबकि परमेश्वर की ओर से उन्हें ऐसा कोई संकेत नहीं मिला होता है। जी हाँ, परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बुद्धि काम में लें और उसकी बाट जोहें। विश्वास कहलाने वाली प्रत्येक बात आवश्यक नहीं है कि विश्वास हो। मैंने मनुष्यों को इस रीति से विश्वास का विनाश करते हुए भी देखा है। एक बार मेरी कलीसिया में एक महिला आकर मुझसे कहने लगी कि वह विश्वास की चंगाई के लिए जा रही है। मैंने उससे मना किया। मैं चाहता था कि वह डॉक्टर के पास जाए। वह कहने लगी, ओह डॉक्टर, आप कैसे गलत हैं, परमेश्वर मुझे निश्चय ही चंगा करेगा। आपके विचार में मुझे इस चंगाई देने वाले के पास नहीं जाना चाहिए, परंतु मैं जाऊंगी और चंगाई अवश्य पाऊंगी। जी हाँ, वह गई और उसे मुक्ति नहीं मिली। वह विमूढ़ हो गई। वह सोचती थी कि परमेश्वर उसे चंगा करेगा, परंतु चंगाई न पाने के कारण वह विश्वास त्याग कर परमेश्वर के विरुद्ध हो गई। वह कहने लगी, परमेश्वर ने मुझे गिरा दिया है। जी नहीं, उसने उसे गिराया नहीं। वह तो केवल यह चाहता है कि हम मूर्खता का काम न करें। वह चाहता है कि हम पवित्र बुद्धि काम में लें। उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। उसकी मूर्खता के कारण वह अंत में मर ही गई। मेरे प्रिय मित्रों, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, परंतु हमें सुनिश्चित भी करना है कि हम उससे निर्देशन पा रहे हैं या नहीं। कभी कभी हमें आगे बढ़कर वैरी का सामना भी करना है, तो कभी पीछे भी हटना है। हम पहले इतिहास के पुस्तक 14 अध्याय के 15 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और जब तूत के वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुन पड़े, तब यह जानकर युद्ध करने को निकल जाना कि परमेश्वर पलिस्तियों की सेना को मारने के लिए तेरे आगे जा रहा है। मेरे एक मित्र ने मेरे पास आकर मुझे शुभ संदेश सुनाया कि वह नई कलीसिया में सेवा करने के लिए जा रहा है। क्योंकि मैं उस कलीसिया के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, इसलिए मैंने उसे वहां ना जाने का परामर्श दिया। उसने पूछा, क्यों? मैंने कहा, आप तूत के वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट सुनने तक प्रतीक्षा करें, तब वहां जाना। कभी ऐसा समय भी आता है कि हमें तब तक प्रतीक्षा करना पड़ता है जब तक कि यह सुनिश्चित न हो कि परमेश्वर हमारे लिए मार्ग तैयार कर रहा है। जी हाँ, विश्वास में आगे बढ़ जाने वाली बात संभवतः विश्वास न हो। ऐसा भी हो सकता है कि वह कोरी कल्पना हो। हम परमेश्वर पर विश्वास करने की अपेक्षा उसकी परीक्षा लेते हों। हमें संकेत पाने तक परमेश्वर की प्रतीक्षा करना जरूरी है। तूत के वृक्षों में फुनगियों की आवाज, हमें सावधान रहना है कि जिसे हम विश्वास में कदम उठाना कहते हैं वह कहीं मूर्खता का काम तो नहीं है। जी हाँ, हम कभी कभी विश्वास के नाम में परमेश्वर की परीक्षा लेते हैं। मित्रों, मैं आपके जीवन के बारे में नहीं जानता कि आप किस प्रकार अपने विश्वास के कदम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कई बार हम में से कई ऐसा ही करते हैं। जिस काम को मुझे या आपको नहीं करना चाहिए हम उसी काम को करते हैं और परमेश्वर को दोष लगाते हैं। आज परमेश्वर मुझे और आपको इस वचन के दर्शन में यह बताना चाहता है कि मुझे और आपको उसके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, प्रतीक्षा की आवश्यकता है, ताकि हम सही समय पर सही कदम उठा सकें जो परमेश्वर की ओर से हो, और परमेश्वर मुझे और आपको विजयी दिलाएगा। जी हाँ, मैं नहीं जानता कि इस समय आप किस प्रकार की परिस्थितियों में होकर के गुजर रहे हैं। मैं यह भी नहीं जानता कि आप इस समय क्या सोच रहे हैं, लेकिन इस बात को मैं जानता हूं कि परमेश्वर का योजना आपके जीवन के प्रति है और वह चाहता है कि आप सफल होएं। लेकिन आप उसके समय का इंतजार करें। हो सकता है कि आप अपनी नौकरी के लिए परेशान हैं, अपने जीवन साथी के लिए परेशान हैं, या आर्थिक दबाव से पड़े हुए हैं और उसके लिए आप परेशान हैं। आप परमेश्वर की निकटता में आए, आप धीरज रखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने विश्वास को बनाए रखें और निश्चय जाने कि परमेश्वर आपको विजयी बनाएंगे। लिखा है तूत के वृक्षों में फुनगियों की आवाज। जी हाँ, एक समय आएगा जिसे परमेश्वर आपको बताएंगे और उसमें आपको सफलता प्रदान करेंगे। आप निराश ना हो, धीरज रखें, परमेश्वर के वचन पर मन लगाएं, उसके अनुसार अपने आप को ढालें और पवित्र इच्छा को जानने का प्रयत्न करें। मेरे मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं यह विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन में आपने अवश्य ही अपने जीवन के लिए उत्तम बातों को प्राप्त किया है और परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
तेरे सिवा जग में मसीह।